नारायण 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 सर्वतो मनसो संगम आदो संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रश्रयं च भूते श्रद्धा यथोचितम् शौचं तपस्तितीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्वं दंडसंयोगः। उत्तम श्रेय की प्राप्ति के लिए शादे परम ब्रह्मण निष्णात सद्गुरु के पास जाए और उनसे निष्कपट होकर के भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें, जिससे सबकी अंतरात्मा और जिनसे प्रेम है उनको सब कुछ यहां तक कि अपने आप को भी समर्पित कर देने वाले भगवान की अवाप्ति होती है। तो निष्कपट होकर के भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें। बिना शिक्षा के किसी भी धर्म की गति नहीं हो सकती है। धर्म माने हम लोग प्रसंग के अनुसार समझे, धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने विधि और निषेध। सूत्र के अनुसार भी प्रेरणार्थक जो वाक्य हैं वेद के, उनसे जो आदेश प्राप्त होता है उसे धर्म कहते हैं। चोदना अर्थो लक्षणो धर्मः, प्रेरणा जिसकी प्रदान करे। तो वेद जिसकी प्रेरणा प्रदान करे वो धर्म है। धर्म माने आचरण, वेद माने जो हमारा अत्यंत हितैषी है वो। वेद अत्यंत हितैषी है इसलिए उसके वचन धर्म है। ईश्वर हमारा परम हितैषी है इसलिए उसके द्वारा निर्देश दिए गए आदेश धर्म है। गुरु हमारा आत्मदेवता है इसलिए उसके द्वारा बताए गए आदेश हमारे लिए धर्म है। इसलिए धर्म है, सबसे क्यों ना धर्म पूछ ले, इन्हीं से क्यों पूछे, वेद से पूछे, ईश्वर से क्यों पूछे, गुरु से क्यों पूछे। तो सबसे पहला कारण यह है कि वो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं इसलिए हमारी जिज्ञासा करने पर वो अवश्य बताएंगे। तो प्रेम से तो और कोई भी हमको बता सकता है, लेकिन जो दूसरा कोई बताएगा संभवतः हमसे प्रेम भी करता हो, लेकिन वो चूंकि सर्वज्ञ नहीं है, चूंकि वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, तो हमारे लिए क्या करना ठीक होगा इसका निर्णय वो नहीं कर पाएगा। उसके मन में कपट नहीं है, उसके मन में प्रेम है, लेकिन चूंकि वो जानकार नहीं है, वो प्रेम से तो करेगा लेकिन ज्ञान के अभाव में क्या उचित है करना ये वो नहीं समझ पाएगा। एक सेठ जी का नौकर था, बहुत प्रेम करता था। सेठ जी की कोई भी अप्रिय क्रिया करते ही नहीं था, ना करने देता था। एक दिन सेठ जी विश्राम कर रहे थे और एक मक्खी आ गई सेठ जी को तंग करने के, यहां बैठे फिर वहां बैठे। अब बेचारा नौकर उनके सेठ के ऊपर मक्खी बैठे, एक बार उड़ाया दो बार उड़ाया। अच्छा पता नहीं क्या मक्खियों की साइकोलॉजी है, जब उड़ाओ तो उसी जगह फिर आके जरूर बैठेगी, पूरे कमरे में एक मक्खी होगी लेकिन तंग करवा रही, ज्यादा होंगी तो गनीमत, एक तो जरूर तंग करती है, कार में घुस जाए तो देखो क्या हालत होगी। और पता नहीं क्या हम लोगों की भी साइकोलॉजी है, एक भी मक्खी होगी तो सारा ध्यान फिर वो ब्रह्म की तरफ हट करके वो मक्खी भी मक्खिया काराकारित वृत्ति हो जाती, ब्रह्मा काराकारित वृत्ति नहीं होती। पता नहीं क्या कारण, हम औरों की नहीं जानते अपनी जानते, मक्खी का अगर आ गई तो बस। तो वो नौकर कैसे सहन करे, उसने उड़ाया दो जाप, उसने कहा मक्खी से तो मान जा, मैं तेरे से कह रहा हूं, अब तूने अगर मेरे सेठ को तंग किया तो ये रहा डंडा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। अब मक्खी शायद उसकी भाषा नहीं जानती होगी, वो गलती से आई और इस बार सेठ जी के नाक के ऊपर बैठ गई। नौकर ने पहले मना कर रखा था, बैठना बात मैं तुम्हें टांग तोड़ दूंगा, ये डंडा रखा है। अब नौकर की बात नहीं मानी, ये हिमाकत, इतने बड़े सेठ का नौकर उसकी बात न माने, उठाया डंडा और एक मक्खी के ऊपर मार दिया धड़ाम से। मक्खी तो उड़ गई, सेठ जी के नाक की चटनी बन गई। तो उस नौकर के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, उसने तो सेठ का हित ही किया। मक्खी डिस्टर्ब कर रही है, इसकी टांग तोड़ना है, और बेचारे ने ईमानदारी पूर्वक मक्खी की टांग तोड़ने के लिए ही डंडा चलाया था। अब बेचारे सेठ की नाक टूट गई तो उसमें उसका क्या दोष है, सब क्या था? तो किससे मार्ग पूछे, प्रेम करने वाले से? प्रेम करने वाले ने कर तो दिया नाक की चटनी का, जो सर्वज्ञ हो उससे पूछे। हित करने वाला परिवार का कोई और सदस्य भी है, ऑपरेशन के बाद बड़ी प्यास लगती है, क्योंकि उसके पहले वो सब दूध और अरे भोजन पानी सब इतने घंटे पहले मना, ऑपरेशन के बाद और खास तौर से टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद बड़ी प्यास लगती है। और प्यास लगी और तुम मांगो, भगवान करे आप ना मांगो, रहने दो मैं इसको दूसरी तरह से करता हूं, कोई मांगे आप खाए को मांगो खाए को, भगवान ऐसी नौबत करे कि जो जरूरत पड़े अब पड़ जाए तो बात अलग है, मैं क्यों कहूं। हमारे साथ बीता इसलिए मैं जानता हूं, चलो अपने लिए कह देता हूं। बड़ी भयंकर प्यास लगी तो क्या हुई कि हमारे तो नर्से जो बड़ा प्रेम करती हैं, सिस्टर प्यास लगी थोड़ा, अब मैं क्या बताऊं, बड़े हां अभी आता हूं, और ऐसे मटक के चली जाएंगी कि अब ताकते रहो, आ रही सिस्टर पानी लेके, आ रही पानी लेकर, प्यास से हम तड़प रहे हैं। ऐसे में हमसे बड़ा प्रेम करने वाला एक आदमी जो मूर्ख नहीं है, नौकर की तरह मक्खी की टांग नहीं तोड़ता है, समझदार है, वो लाके कहे अरे स्वामी जी तो गंगा जल पीते हैं बहुत बढ़िया ठंडा गंगा जल ला करके, क्योंकि हमसे प्रेम करता है इसलिए बहुत बढ़िया चांदी के गिलास में हाथ साफ करके पोंछ करके गिलास को भी बाहर से साफ करके। अरे ये भी अकल आनी चाहिए, पानी कैसे पिलाना है। कई लोग फुहार ढंग से दे देते हैं, हाथ पहले धोए अपने, गिलास साफ करे स्वच्छ जल, फिर ऊपर अगर कोई छीटा उठा लगे तो उनको भी पोंछ दे, तो लगेगा ये डिसेंट पर्सन गिलास दे रहा है। और कभी कभी लोग गिलास में दे देते, कोई इधर पानी लगा कहीं इधर दूध लगा हुआ या चाय लगी हुई है, हाथ में थोड़े उसके निशान लगे हुए हैं, तो वो थोड़ी तो थोड़ा ठीक नहीं है ना। जब अभी हमारे पक्ष में गिलास साफ कर, तो किसी ने बड़े प्रेम दिला के गिलास का पानी पिलाया, बहुत प्रेम करता है, उसको गिलास का पानी देते देखा अच्छी से क्या करो क्या करो क्या करो, अरे पानी प्यास लगे चलो। तो अब वो जो बहुत प्रेम करने वाला हमको बहुत डिसेंटली गंगा जल शुद्ध ठंडा किया हुआ दे रहा है, उसको रोका जा रहा है, क्योंकि उसका गंगा जल देना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं। प्रेम है, समझदार है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। अरे प्यास लग रही पानी दो भाई, प्यास मर रहा है पिला दो पानी, कितने प्रेम से पानी पिलाया। लेकिन चूंकि वो जानता नहीं है कि टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन के बाद पानी नहीं पिलाना, अब तो खैर बहुत अच्छे एनेस्थीसियाज आ गए हैं, पहले जब नाक के माध्यम से दिया जाता था उस समय तो कई दिन तक उल्टी आती थी। तो अब प्रेम करने वाला है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, तत्काल देख रहा है इनको प्यास लगी है तो इनको पानी पिला दो, लेकिन सर्वज्ञ न होने के कारण पानी लाभकारी होने के बजाय हानिकारक हो जाएगा नहीं जानता है, इसलिए उसके द्वारा पानी पिलाया जाना अनिष्ट है। इसलिए सर्वज्ञ के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ही, कम से कम हम तो अपने डॉक्टर के बड़े शरणा करते हैं, डॉक्टर कहता है ये करना तो हम आंखें बंद करके वही करते हैं, हमारा अभ्यास है शरणागति का। तो इसलिए प्रेम करने वाला भी होए लेकिन प्रेम करने के साथ साथ अकल भी होए, अकल माने दूर तक समझ सके। जो दूर तक समझ करके निर्णय कर सकता है उससे धर्म का आदेश प्राप्त करे, क्या करे, पानी पिए कि नहीं पिए। इसलिए गुरु आत्मदैवता, या तो गुरु से पूछे या ईश्वर से पूछे या वेद से पूछे, उन्हीं के बताए हुए आदेश धर्म है। तो उनके पास जाके अमाया अनुवृत्तिया बिना कपट के जाके उनसे पूछे, जिससे भगवान जो अपने आप को विभक्तों को दान कर देते हैं वो तुष्येत माने प्रसन्न हो जाए। तो जा करके भागवत धर्मों की जिज्ञासा करें। तो बिना जाने हुए क्या धर्म है इसका निर्णय नहीं हो सकता है। यहां पर बात चली थी तब ये प्रसंग चला। तो गुरु आत्मदैवत से जिज्ञासा करे कि भागवत धर्म क्या है और मैं उनका किस तरह अनुष्ठान करूं। तो क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करनी है, तब शिक्षा क्या है, सर्वतो पहली शिक्षा सर्वतो मनुषो संगम। सर्वता माने सब जगह से, जहां जहां मन जाए जाता है वहां वहां से इसको रोक ले। शरीर में जाता है तो शरीर में जाने से रोक ले। माने हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि शरीर अपने आप में बाधक नहीं है। शरीर अगर बाधक होता तो भगवान इतने बेवकूफ नहीं हैं जो हमको शरीर देते। शरीर बाधक नहीं है माय डियर, शरीर तो जितने भी हेतु हैं उनका पूरक है। बिना शरीर माध्यम निश्चयेन खलु, माने निश्चयेन धर्म साधनम, संसार के जितने भी धर्म साधन हैं माने कर्तव्य की संभावना शरीर के रहने पर ही हो सकती है। अगर शरीर नहीं है तो कोई भी धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तो शरीर की रक्षा करनी है, लेकिन शरीर से आसक्ति नहीं करनी है। आसक्ति होना एक अलग वस्तु है और ख्याल रखना एक अलग वस्तु है। आसक्ति रख करके तो ख्याल नहीं होता, उल्टा आसक्ति के कारण गड़बड़ कर बैठते हैं। अनासक्त भाव से ही ठीक ठीक निर्णय किया जा सकता है। शरीर की आसक्ति के कारण कई बार हम लोग गड़बड़ करते ही हैं, हम सब जानते हैं। उसका क्या उदाहरण दें? अनासक्त भाव से निर्णय जो होता है वो शरीर के लिए हितकारी है। डॉक्टरों को सिखाया जाता है, नर्सेस को सिखाया जाता है, मरीज से प्रेम तो करो, आसक्ति मत कर लेना। हमको याद है एक बार हमारे कोई टेस्ट किया जा रहा था जसलोक हॉस्पिटल में, तो जो टेक्नीशियन थी लड़की थी वो बड़े प्रेम से कुछ मुझे हबी को प्रेम से बातचीत कर रहे थे। तो मैंने कहा वो बेचारी निर्विकार भाव बड़े प्रेम, लेकिन उसकी जो डॉक्टर है ने घुड़क दिया उसको। बिल्कुल ठीक बात है, वो निर्णय करना गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर से प्रेम करो लेकिन संग नहीं करो, आसक्ति नहीं करो। इसको उचित भोजन दो, इसको उचित कपड़े दो, इसको उचित विश्राम दो। ये शरीर के लिए कर्तव्य है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग शरीर को भूखा मार देना इसी को तपस्या समझ बैठते हैं। जो कोई एक विशेष साधन हो वहां की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सामान्यतः शरीर को इस तरह से वंचित रखना साधन की दृष्टि से हमको लगता है, हमारा अनुभव है, उचित नहीं है। बहुत अधिक दो ये मांग रहा वो दो नहीं, जो इसके लिए हितकर है, प्रियकर है वो दो। अगर गुजराती है तो दाल ढोकली मांगता है तो दो। अगर बंगाली है तो सूखा भात मांगता है दो। दक्षिण भारत का शरीर सामरम और अन्नम मांगता है तो दो। कर्नाटक वाला अन्ना सारू बेका तो दो। जो उसको प्रिय हो वो दो, कोई आपत्ति नहीं। अब दक्षिण भारत वाले को और तुम सूखा भात दे दो, भूखा ही मर जाएगा। सूखा माने बड़ी कड़वी सब्जी होती है, वो बंगालियों को या हमारे जैसे लोगों को प्रिय है, बाकी तक थू थू करके फेंक देगा। उसमें नीम की पत्ती डाली जाती है अगर करेला ना मिले तो कड़ुआ बनाने के लिए। तो प्रियकर भी होए लेकिन हितकर भी हो, वो दो शरीर को, लेकिन कितना दो ये विवेक रखो। भगवान बुद्ध के वचन हैं, किसने पूछा था उसी के पर दृष्टांत दिया था, वीणा के तार को अगर स्वर से बजाना है तो व्यवस्थित ढंग से उसको तानो, अगर बहुत अधिक उसको खींच दोगे ऐसे ऐसे करके उमेट करके करते हैं तो थोड़ी दूर तक तो आवाज महीन आएगी और उसके बाद वीणा का तार टूट जाएगा, प्रयोजन खत्म हो जाएगा। और बहुत अगर उसको टानोगे नहीं, उसको स्वर मिलाना कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, टानो कहते हैं, अगर टानोगे नहीं ढीला करोगे तो भद 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 आवाज नहीं निकलेगी। तो जिस तरह का राग तुमको निकालना है, इन लोगों से पूछो बता देंगे, एक्सपर्ट है इनमें भी, कई लोग हैं जानकार हम जानते हैं। तो जिस तरह का राग निकालना है वो कान वाले कैसे टुन 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 करते हैं, तबले वालों को देखो ऐसे टुन टुन करते हैं, फिर कभी ठुक ठुक ठुक, फिर कभी कभी ऊपर से ठोकते, कभी अरे जरा से ठुक, बस इतने में स्वर बदल जाता है। तो जो स्वर तुमको निकालना है उस स्वर के अनुसार उसको उमेटो, स्वर बांधो, अगर बहुत टान दोगे टूट जाएगा, ढीला छोड़ दोगे भद 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 हो जाएगा, उसको युक्ति से टानो। गीता में भी भगवान ने वही कह दिया है, बहुत अधिक सोने वाले को और बहुत अधिक जागने वाले को योग नहीं सिद्ध होता है, बहुत खाने वाले को और बिल्कुल अधभुका, हम औरों की तो नहीं जानते हैं, हमको अपनी मालूम है। अगर भूख लगी हो तो हमसे भजन वजन कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कुछ भी मिल जाए, बासी को बासी वो चलता है। एक बार हम गोमुख गए थे नहाने के लिए, अपना अनुभव बताते हूं, वहां कहो मैं अनुभव वो ठीक रहता है। वहां गोमुख में नहाने गए, हमारे संग एक स्वामी दिव्यानंद जी थे, बड़े अच्छे महापुरुष, तो हम दोनों गए, वो थोड़े शरीर से कमजोर थे, हम थोड़ा ठीक थे, अभी भी ठीक हैं, तो उनका आसन वासन हम उठा लेते थे और भोजन वो बहुत बढ़िया बनाते थे। तो अपने दोनों का परस्परम भाव यंता श्रेया पर वो आपसे पाता, लक्ष्मण दास जी अवधूत थे वहां गंगोत्री में, उनके यहां थे हम लोग, खूब बढ़िया चकाचक आटे को घी और दूध दोनों से मिक्स करके परौठा बनाए थे। अब वो कैसे बनते हैं मारवाड़ियों से पूछो, वो वहां का व्यंजन है, घी और फिर आटे में सान दे, मुंह में पीछे पड़ेगा पहले ही गल जाएगा। क्यों माय डियर, अब तो शायद नहीं मिलता होगा, कभी तो मिला होगा, जब मिला था तब की बात था, हम तो अभी भी कभी कभी मिल जाए तो हाथ मार देते हैं, एक समय थोड़ा कम भोजन करेंगे नहीं कर लेंगे। तो घी वो अपने बहुत बढ़िया परौठा बना के ले गए थे, परोठा तो हमको याद है, कुछ और भी सामान था वो मैं भूल गया, लेकिन परोठा मुझे इसलिए याद है कि बहुत बढ़िया परोठे बने थे और शायद गर्मा गर्म कोई ड्रिंक ले गए थे, कॉफी थी कि चाय थी, कोई ना कोई हॉट ड्रिंक थी, दो चीजें पक्का है, बाकी और क्या क्या था मुझे याद वाद नहीं है, सब्जी क्या थी हमको याद नहीं है, लेकिन परोठा हमको पक्का याद है, उसका रूप भी याद है, टेस्ट भी याद है। तो गोमुख में हम गोता लगाए, कोई लगाता होगा था नहीं गोमुख गोता, हम उस समय तगड़े थे, गोता गोमुख में भी लगाए, गोमुख थोड़ा आचमन किया जाता है ऐसे किया जाता। अब गोता लगा करके बाहर आए, एनर्जी लॉस हुआ तो बॉडी को क्रेव हुई फूड की, और हम नहा धोकर के कपड़े बदल करके, अरे नहा के बाहर आए तो एकदम अटेंशन हो गए, शरीर पूछे ही नहीं जाए, तौलिया को उठाए, क्या थोड़ी देर बाद अब हम पाठ करने बैठे विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, और पेट में चूहे अपना कंपटीशन लगा रहे हैं। मैंने बहुत जोर लगाया कि भैया पाठ कर लो, परोठा तो धरे कोई भागे थोड़े जा। हमारे मणि राम ने कहा ना, हमको तो परोठे खाने। तो मैंने सोचा ऐसे पाठ करने से क्या फायदा है, ध्यान हमारा परोठे में लगा है, विष्णु में लग ही नहीं रहा है। तो मैंने दिव्या जी से कहा, अपने जो मित्र थे हम दो ही जने थे, कि माय डियर हमारे भगवान, हमको तो लग रही भू, हमारे भगवान तो खा पी करके पाठ स्वीकार करते थे। अरे कहा भैया तुम जा रो, तुम करो पाठ, हम तो शुरू करने जा रहे हैं। और समय चल करके गए थे, अवस्था भी थी, यहां तक तो मैंने डट के खाया ही होगा, कम से कम इसके ऊपर तक नहीं, डट के खाया। ओ, प्रेम से आनंद ले, बढ़िया परोठे थे एकदम, मोहन घी दूध। और उसके बाद अगर कोई संधि में जगह खाली रह गई तो वो हॉट ड्रिंक पी लिया। और इसके बाद फिर हम ओम विश्वम विष्णुर वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। अब हुआ क्या, दिव्या जी तो भूखे थे, उनकी उम्र भी जाता थी, जल्दी जल्दी पाठ कर करा करके और किसी तरह पाठ करके धर करके, और फिर उन्होंने किया। अब हमारा तो पाठ हुआ नहीं था, हम तो धीरे धीरे पाठ का आनंद ले रहे थे, उनका तो पाठ हो गया जलपान करके, अब क्या करें। तो वो उठ करके वहां से चल दिए भोजवासा के लिए, हमने कहा तुम चलो हम आते हैं। और हम पूरा दिन भर एकदम अकेले, दो चिड़िया थी और एक तीसरे हम, बस सब चले गए थे सवेरे सवेरे, 10-12 जने होंगे सर, सब चले गए, उस समय इतने लोग जाते नहीं थे। और हम पूरा दिन भर मौज मारे गोमुख में, पूरा दिन, संध्या समय लौट करके आए, तगड़े थे, फिर नेक्स्ट तब तक तैयार गए। यहां लौट के आके देखा दिव्यानंद जी कम्बल ओढ़े लेटे थे, उनको बुखार आ गया था, समझ गए। वीणा के तार को इतना कसो कि स्वर निकल आए, टूट न जाए, भदभद न हो जाए। तो इसलिए माय डियर शरीर को तो ध्यान रखो, ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारी हानि है, लेकिन आसक्ति मत करो। आसक्ति नहीं करोगे तो शरीर को जो चाहिए तुम कैलकुलेट करके देते रहोगे, आसक्ति करोगे, माया करोगे तो तुम कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाओगे। गड़बड़ सदैव आसक्ति से होता है। जब भी एक गांव के, उस जमाने की घटना है, गांव के जो होते थे एक अधिकारी मुसलमानों के जमाने में, क्या बोलते थे मुझे नाम भूल नहीं बोला कुछ, जो भी वो थे, तो उनका, अच्छा बड़े आदमियों के बैल हरदम कमजोर होते हैं, अरे चारा डाल दिया कि नहीं डाल दिया, दाना डाल देना। अब नौकरों को किसको ध्यान है, उनके बैलों को ध्यान है, और जो गरीब आदमी वो अपने हाथ से बैलों को चारा पानी देता है, ध्यान रखता है, उनके बैल हरदम तगड़े मिलेंगे, हमको अपने उसका पहले पूर्वाश्रम का ध्यान है। तो तेली का एक बैल था, तेली का बैल दिन भर काम करता था जरूर, लेकिन तेली इसको खूब खिलाता था और खरी भी खिलाता था, खरी समझते ना, वो तेल की खरी, तो तगड़ा। अब बैलों का स्वभाव आपस में लड़े, तो वो जो हुजूर साहब का बैल था वो कमजोर पड़ा, तेली का बैल तगड़ा पड़ा, मारा और मर गया। वो तेली घबराया, तेली ने जाके मालिक से कहा, हुजूर, उन्हीं हुजूर से, अगर दो बैल आपस में लड़ें और उसमें से एक बैल दूसरे बैल को मार डाले तो क्या दंड होगा उसकी मृत्यु का। तो हुजूर कहा, इसमें क्या, तो पशु है, उनको क्या पता, अगर उसने मार दिया तो मर गया, खत्म, यही बात है। हां हुजूर, आपके बैल को हमारे बैल ने मार दिया। अच्छा ये बात है, खलीफा उनका सर्वेंट, हां जरा लाल किताब लाना, अभी तक लाल किताब की जरूरत नहीं पड़ी थी। लाल किताब लाना, लाल किताब लाए। भैया तेली, लाल किताब में लिखा यूं, तेली ने बैल लड़ाया क्यों? पहला दंड, खिला पिला के किया मुष्टंड, दूसरी गलती। इसलिए दो गलती के कारण बैल का बैल और 50 रुपया दंड। तुम्हारा बैल जब्त किया जाता है और तुमने खिलाफ इसे 50 रुपये तुमको दंड और देना पड़ेगा। ये निर्णय कैसे बदल गया? बैल हजूर का था। तो सर्वतो मनसो संगम, शरीर से असंग रहो, आसक्त मत हो, केयरफुल हो। यस, सर्वता में इसी तरह से अब और जोड़ लो उनकी हम सबकी क्या व्याख्या करें। शरीर से, संतान से, उनसे, इनसे, मन से अनासक्ति सीख ले। सबसे पहला सर्वतो मनसो संगम, संग न करे, संग सर्वथा त्याज्य, ऐसा भक्ति सूत्र में भी आया है। माई डियर, हम लोग सोचते हैं कि उससे क्या होगा, थोड़ी देर हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन बिगड़ता है। कानकुब्जों की बारात पहले 4-5 दिन ठहरा करती थी कन्या पक्षियां जाके। पहले दिन स्वागत होता था, फिर दूसरे दिन इत्यादि इत्यादि होता था, जाने वाला। तो 4-5 दिन रहा जाता था और बड़ी खातिरदारी होती थी। उस समय ये सानी नहीं लगा दी जाती थी कि सानी लग गई भैंस की तरह मुंह मारो जाके जिसको जो चाहिए। अरे भाई साहब, चाचा जी आप तो कुछ खाए नहीं, अरे इतना बढ़िया बना के लाए, देखो कितनी बढ़िया कचौड़ी है, एक तो ले। अब तो ऐसे कोई नहीं खिलाता है। बचपन में तो आपने अनुभव किया कि नहीं किया? बड़े प्रेम से पत्तल में खिलाते थे। आपने झूठ सब मालूम खूब खाया, आपने कुछ खाए नहीं, सब तो पत्तल में पड़ा हुआ है, कुछ खाए नहीं, अरे आप ये तो लीजिए, ऐसा प्रेम से खिलाया जाता था। तो दिन भर खाओ, और उस समय टीवी वीवी चले नहीं थे, रेडियो ही थे, अधिक से अधिक ये छोटे छोटे कान मोड़ने वाले भी नहीं थे, ट्रांजिस्टर्स भी नहीं थे, तो रेडियो दिन भर कुछ होता नहीं था। तो लोग खाली बैठे क्या करें, तो लोग ताश खेलते थे, ज्यादातर अधिकतर ताश, या फिर कोई नावल पढ़ते थे, या फिर कुछ लोग गप मारते थे। सत्संगी तो जो कुछ बड़े बूढ़े जो होते थे कोने में पड़े हुए अपना कर रहे हैं, उनको ये सब बाबा लोग लगे हो अपने धर्म कर्म में, वो सब वन साइडेड ज्यादातर लोग। तो हमारे बचपन की बात है, तो एक जगह हमको उस समय तक 2-3 खेल मालूम पड़ गया था। एक कोट पीस आता था, एक 3-2-5 आता था, और अभी नया नया हमने 29 भी सीखा था। बस ये 3 गेम हमको आते थे। तो हमको मालूम था कि कोट पीस में इक्का बड़ा होता है, फिर बादशाह, बेगम, गुलाम, और 29 में गुलाम बड़ा होता है, फिर इस तरह से हायरार्की हमको मालूम थी। लेकिन एक जगह खेल हमने देखा, वो केवल ऐसे 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 करके कुल 3-3 पत्ते दे रहे थे, 1-2-3, और जैसे जैसे पत्ते मिले, ऐसे धीरे से उसको सरकाते थे कि पता नहीं कहीं टूट न जाए। मैं देखू ना इसमें इक्का, न बादशाह, न गुलाम, न बेगम, ये क्या कर रहे हैं, और बार बार पैसे क्यों फेंक रहे हैं? हम बड़े जिज्ञासु की तरह से, अथा तो ताश जिज्ञासा, खड़े होकर देखने लग गए। तो इस शरीर के पिताजी थे, उन्होंने कहा हटो वहां से,
पिताजी आज्ञा करे और हिम्मत पड़ेगा तुरंत भागे वहां से। लेकिन मन के अंदर ये भाव आ गया, हमको क्यों हटाया? अरे वो खेल रहे थे, ताश ही तो चल रहा है, हमको गंदी जगह थे नहीं, परिवार वाले ताश खेल रहे, फिर हम कोई खेल नहीं रहे थे भाई, हम तो खाली देख रहे थे, दूर से देख रहे थे, पत्ता भी हमारे हाथ में नहीं था, क्यों हटा दिया हमको? वो तो लोटा लेके चले गए, घंटे डेढ़ घंटा तो लगेगा नहा धो के आने में, अपने को देख लिया गए हम, फिर पहुंच गए वहां। अब बड़े गौर से देख रहे हैं भाई, एक ने पैसा फेंका, मैं तो गड्डी में जाता हूं, जो गड्डी में चला गया, बाकी जो रह गए वो चाल और ऐसे ऐसे। हमने सोचा कि क्या है, तो बड़े गौर से हमने जब देखा, शायद कुछ पूछा भी होगा, जिज्ञासु थे, तो हमको पता चला इस खेल में और ये नियम कानून है उसके, अगर दो जोड़े हैं तो अच्छे हैं, एक इसके साथ अगर जोड़ा है तो और अच्छा है, छोटा जोड़ा है तो उससे बड़ा वाला जोड़ा अच्छा है, तीनों एक रंग के हैं तो और अच्छा है, ये सब के सब उतने साल पहले के, हाफ सेंचुरी तो बीत ही गई कम से कम, अब तक वो संस्कार याद है। ये देख करके हमको लगा यार, पर एक आध जने तो उसमें ब्लफ भी दे रहे थे, कुछ नहीं था तो भी चाल दे रहे थे, वो बेचारा दूसरा घबरा के चला गया, तो निकाल दे मेरा कुछ सारे पैसे समेट लिए ऐसे करके, मैंने सोचा तो बड़ा बढ़िया काम है, चलो अपने भी करके देखें। जैसे ही मन में हमारे आया चलो एक आध बार हम भी खेल के देखें, तत्काल ध्यान आ गया पिताजी ने क्यों हटाया था वहां से, हम ताश खेले नहीं माई डियर, लेकिन उतनी देर का संग हमको आज तक संस्कार दिए बैठा है कि दो जोड़ी का अगर गुलाम की जोड़ी है तो बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं बेगम वाला जोड़ी वाला आ गया तो मार देगा नंबर। माय डियर, इसलिए एक क्षण का भी दुसंग, अरे चिलम पीने वालों के साथ रहो ना तो थोड़े दिन में चिलम पीनी पड़ती है, अरे जिसने नपी गांजे की कली उस लड़के से लड़की बनी, और जब ये संस्कार पड़े ना तो फिर लड़के बनी जाएंगे, और इसी तरह से संतों के बीच में रहेंगे, अरे पांच माला तो फिर ले भैया, फिर भोजन करना। तो माई डियर, एक क्षण का संग भी, वो इसने आयत था प्रारंभ में क्षणार्धम, क्षणार्ध का भी सत्संग सेवधिर नृणाम, नर के लिए परम कल्याण करने वाला है। और कोई अच्छा संस्कार पड़ जाए तो न जाने कब काम आता है। एक बार हम अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल में, ये 60s की बात है, उसमें तो बहुत अधिक निकटता थी, अभी भी है, तो वहां प्रणाम किया, वहां हलवा मिला, हलवा मिला तो कोई नहीं, अब हाथ में घी लगा है तो वहां तो लोगों का सबके दाढ़ी होती ऐसे ऐसे कर लेते हैं, हमारी दाढ़ी थी नहीं तो हम क्या करें, तो पीछे सरोवर में आचमन करने गए, तो अब ब्राह्मण शरीर की आदत है पहले हाथ धो हस्त प्रक्षालनम तब आचमनीयम, हम हाथ धोने के लिए जैसे ही बढ़ाए एक गुरु सिख ने हमसे कहा, स्वामी जी ये अमृत है इसमें हाथ नहीं धोते, इतने सतर्क हैं वो लोग, हम लोग तो गंगा जी में कर देते, वो संस्कार हमने हाथ नहीं धोए, आचमन किया और चले गए। 25-30 साल तक और 40 साल तक कोई संस्कार याद ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, कोई जब रमन रेती में सरोवर बना और हमारे संग एक बालक था मुरली, हम दोनों जने गए और जैसे ही कुछ काम था हाथ धोने के लिए, जैसे ही हमने हाथ बढ़ाया उतने साल पुराना संस्कार याद आ गया, ये अमृत है इसमें हाथ, उतने साल पुराना संस्कार कोई याद नहीं आई थी, लेकिन जब अवसर आया तो हमको उस संस्कार ने रोक दिया। इसलिए अच्छे से अच्छे संस्कार संचित करने की कोशिश करो, न जाने किस समय काम आ जाएंगे, और बुरे संस्कारों से बचने की कोशिश करो, न जाने किस समय हमारा जीवन बदल देंगे। इसलिए सर्वतो मनसो संगम, मन से आसक्ति छोड़ दो, शरीर से तो कैसे करोगे, सबके साथ रहना, लेकिन मन से अनासक्त हो जाए, आसक्ति छोड़। सर्वतो माने सब जगह से, जहां जहां मन जाए वहां से असंग हो जाए, फिर आदौ संगम च साधुषु, मन निराधार टिकता नहीं है, टकतु नहीं, तो इसलिए क्या करे, तो आदौ संगम च साधुषु, साधु पुरुषों के साथ संग। कल सायंकालीन सत्संग में हम लोगों ने सुना था किले में रहना, संतों के साथ रहेंगे, संतों के साथ आसक्ति करेंगे तो उनके गुण अपने में आए, जैसा करे संग वैसा चढ़े। अपने आप प्रसिद्ध कहावत है, खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। हमने दोनों तरह का संघ हमको मिला है, भगवान कृपा से संग साधुसु संगम ज्यादा मिला, तो असंग बनने के लिए सब जगह से आसक्ति, मन से बहुत बढ़िया बात लिखी है, मनसो असंगम, असंगता तन से नहीं होती है, असंगता मन से होती है। कभी कभी सोचता लेकिन है तो एकदम सही बात, एक शरीर का व्यापार करने वाली भगवती हमारे पास, हमारे यहां ये जो पूरब के हमारे जो स्थान है गांव बड़े बड़े, उनमें वेश्याएं भी शिष्या होती थी, मंत्र जपती थी और आकर के नृत्य इत्यादि से आश्रम में उस समय सेवा भी करती थी। बहुत से तो पहले तो ये संस्कार थे, बड़े लोगों के बच्चे वेश्याओं के यहां भेजे जाते थे सीखने के लिए, तहजीब पैसा कैसे निकाला जाता वो सिखाती थी, और पुत्रों की तरह वो उसका पालन करती थी। हमें देखा है बताया तहजीब तो ऐसे बढ़िया ढंग से बात, अरे लंडी आई एक बार हमारे आई थी तो कैसे बोलती थी हमको, अब तक उसका बोलना याद एकदम बिछ गई जैसे। पुराने एक सेठ थे उनकी हमने क्रिया देखी थी, तो हमने अपने गुरुसेवानंद जी से जिनको उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया पहले ऐसे शिक्षा। तो खैर मैंने उस माता से पूछा, और हम तो विचित्र हैं हर एक से हर बात पूछ लेते हैं, माता तुम लोगों को ये सब करना पड़ता है तो क्या होता है। मैंने कहा महाराज हमारा मन थोड़ा वहां लगता है, वो शरीर का प्रयोग करते रहते हैं, मनसो संगम, हमारा मन वहां नहीं होता है, उतना निकट का संबंध लेकिन मन से असंग है, उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको कहीं किसी परिस्थिति में रहना पड़ जाए, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन असंगता तुम्हारे हाथ में। तो सर्वतो मनसो संगम, आदौ संगम च साधुषु, महापुरुषों से संग करे, इसी सत्संग के लिए हम यहां बैठे हैं। महाराजा निमि और प्रबुद्ध भगवान के सत्संग के ब्याज से यह हमको प्राप्त हो रहा है। शेष चर्चा कल करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय।
जय राधे जय रमण बिहारी जय नधु नंदन जय हनुधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन नंदन जय हनुधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नधु नंदन जय हनुधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन जय हनुधारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नधु नंदन जय हनुधारी जय राधे जय रमण बिहारी जय नंदन नंदन जय हनुधारी श्री रमण बिहारी लाल की।